ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 18 अगस्त 2019 के लिए है। विषय आत्मा, स्वर्णपथ, भजन संहिता। यहोवा अपने दासों का प्राण मूल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। उत्तरदायी ध्यान, भजन संहिता। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके दरवाजों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरता है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी नीति से निर्भय किया। पाठ उपदेश बाइबल में से, भजन संहिता। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लाजित ना होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार ना करने पाए। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और मुझे शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बातें जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वो तो अनंत काल से होते आए हैं। जो यहोवा की वचा और चेतावनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई हैं। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लाजित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरण आगत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखें, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। भजन संहिता। दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रागत करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। रूत। जिन लोगों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, तब यहोवा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मुआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम अरीमलक और उसकी पत्नी का नाम नौमी था, और उसके दो पुत्रों के नाम महलून और कैलून थे। ये अफराती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मुआब के देश में आकर वहाँ रहे। और नौमी का पति अलीमलक मर गया और नौमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक एक मुआबी ब्याह ली। एक स्त्री का नाम रफा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वो वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलून और कैलून दोनों मर गए, तब नौमी अपने दोनों पुत्रों और पत्नी से राहत हो गई। तब वो मुआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सिद्धि लेकर उन्हें भोजन वास्तव दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब नौमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। रूत बोली, तू मुझसे विनती ना कर कि मुझे त्याग और छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इस प्रकार नौमी अपनी मोआबी बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब के देश से आई थी, और वो जौ काटने के आरंभ के समय बैतलहम में पहुंची। रूत नौमी के पति अलीमलक के कुल में उसका एक बड़ा धानी कुटुंब था जिसका नाम बोज था। और मोआबी रूत ने नौमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बनाती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। तब बोज ने रूत से कहा, जो कुछ तूने अपने पति के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू नहीं जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरी करनी का फल दे और इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। रूत तब बोज ने रूत को ब्याह लिया और वो उसकी पत्नी हो गई। और जब वो उसके पास गया तो यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नौमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने आज तुझे छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इसराइल में इसका बड़ा नाम हो। और उसकी पड़ोसनों ने उसे ये कहकर कि नौमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम उबैद रखा, यशी का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। रोमियो और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएँ, न वर्तमान, न भविष्य, न समर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगा। प्रकाशित वाकी यीशु मसीह का प्रकाशित वाकी जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्ग दूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह से गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। प्रकाशित वाकी फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वो उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ दिव्यमान मनुष्य की आत्मा है और यह मनुष्य को सभी चीजों पर प्रभुत्व प्रदान करता है। मनुष्य को भावतिक आधार से नहीं बनाया गया था, ना ही उन भावतिक कानूनों का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है जो आत्मा ने कभी नहीं बनाए। उनका प्रांत मन की उच्च विधियों में, आध्यात्मिक विधियों में है। मनुष्य आत्मा का प्रतिबिंब है, वो भावतिक अनुभूति का प्रतिअक्ष विपरीत है। जब हम आत्मा को आत्माओं में विभाजित करते हैं तो हम त्रुटि में भाग लेते हैं, मन ही मन में गलती करते हैं और मन को त्रुटि मान लेते हैं। फिर मन को एक पदार्थ के रूप में होना चाहिए, और बुद्धि के सामने कार्य करने के लिए एक अनैतिकता और मृत्यु के मैट्रिक्स को अमृतता होना चाहिए। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जीवन आत्मनिर्भर है और हमें आत्मा के सदा की सामंजस्य से इनकार नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि नश्वर इंद्रियों के लिए कला प्रतीत होता है। ये ईश्वर ईश्वरी सिद्धांत के लिए हमारी अज्ञानता है जो स्पष्ट कला उत्पन्न करता है और उसके सामंजस्य की सही समझ उत्पन्न करता है। किसी तरह जल्दी या बाद में सभी को भावतिकता से श्रेष्ठ होना चाहिए और दुख इस ऊंचाई में ईश्वरी एजेंट है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। ये परमेश्वर का अधिनायक है। जो लोग उस पर भरोसा करते हैं उन्हें कदम कदम पे पता होगा कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में आती सहेज से मिलने वाला सहायक। ईश्वर में हमारी हर आस्था का परीक्षण हमें मजबूत बनाता है। आत्मा को जीतने के लिए भावतिक स्थिति जितनी कठिन लगती है उतना ही मजबूत हमारे विश्वास को और हमारे प्रेम को शुद्ध करना चाहिए। परीरित यूहन्ना कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। यहाँ क्रिश्चियन साइंस की एक निश्चित और प्रेरित घोषणा है। परीक्षण नश्वर लोगों को एक भावतिक कर्मचारियों और एक टूटी हुई ईख पर झुकना नहीं सिखाते हैं जो हृदय को छेड़ता है। हम आनंद और सामर्थ्य की धूप में उसे याद नहीं करते। दुख लाभाकारी है। महान क्लेश के माध्यम से हम राज्य में प्रवेश करते हैं। परीक्षण परमेश्वर की देखभाल के प्रमाण है। भावतिक विकास ही उम्मीदों की मिट्टी में बोए हुए बीज से आध्यात्मिक विकास अंकुरण नहीं करता है, लेकिन जब ये क्षय होता है तो प्रेम आत्मा के ऊंचे उत्साह का प्रचार करता है जिसमें पृथ्वी का कोई दाग नहीं होता। अनुभव के प्रतीक क्रामिक चरण में ईश्वरी अच्छाई और प्रेम के नए विचार सामने आते हैं। दुख का प्रतिफल है। ये हमें कभी वहाँ नहीं छोड़ता जहाँ ये हमें पाता है। भट्टी सोने को उस शकल से अलग करती है जो कीमती धातु भगवान की छवि के साथ हो सकती है। हमारे पिता ने जो प्याला दिया है क्या हम उसे नहीं पिएंगे, और जो पाठ पढ़ाते हैं उसे नहीं सीखेंगे? किसने महसूस किया है कि मानवीय शांति का नुकसान आध्यात्मिकता के लिए मजबूत इच्छाओं को प्राप्त नहीं हुआ है? स्वर्गीय भलाई के बाद की आकांक्षा, इससे पहले कि हमें पता चले कि ज्ञान और प्रेम का क्या संबंध है, सांसारिक आशाओं और सुखों का नुकसान कई दिलों के आरोही मार्ग को उज्ज्वल कर देता है। भावना के दर्द हमें जल्दी से सूचित कर देते हैं कि भावना के सुख नश्वर हैं और ये आनंद आध्यात्मिक है। भावना के दर्द सलामत हैं यदि वो झूठे सुखदायक विश्वासों को मिटा देते हैं और भावनाओं को आत्मा से आत्मा तक पहुंचाते हैं जहां ईश्वर की रचनाएं अच्छाई हैं। ये हृदय को आनंदित करता है। ये विज्ञान की तलवार है जिसके साथ सत्य त्रुटि को नष्ट करता है। भावतिकता मनुष्य के ऊंचे व्यक्तित्व और भाग्य को स्थान देती है। आत्मा के पास आत्मा को प्राप्त करने के लिए अनंत संसाधन है और खुशी अधिक आसानी से प्राप्त की जाएगी और हमारे रखने में अधिक सुरक्षित होगी अगर आत्मा में मांग की जाए। अकेले उच्च आनंद अमर आदमी के क्राविद को संतुष्ट कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत समझदारी की सीमा के भीतर खुशी का संचार नहीं कर सकते। इंद्रियां वास्तविक आनंद नहीं देती हैं। मानव के हित में अच्छाई बुराई पर अध्यात्म और पशु पर आधिपति होना चाहिए, परंतु सुख कभी नहीं जीता जाएगा। इस खगोली स्थिति की प्राप्ति हमारे पूर्व जन्म को कम करेगी, अपराध को कम करेगी और महत्व आकांक्षा को ऊंचा लक्ष्य देगी। पाप की हर घाटी को ऊंचा किया जाना चाहिए और स्वार्थ के हर पहाड़ को नीचे लाया जाना चाहिए ताकि विज्ञान में हमारे भगवान का राजमार्ग तैयार हो सके। अपने स्वयं के उद्धार का काम करें, यह जीवन और प्रेम की मांग है। इस अंत के लिए भगवान आपके साथ काम करता है। जब तक मैं ना आऊं तब तक दृढ़ रहना। अपने अमाल की प्रतीक्षा करें और अच्छाई करने में थके नहीं। यदि आपके प्रयास भयभीत भादों से घिरे हुए हैं और आपको कोई वर्तमान इनाम नहीं मिलता है, तो गलती पर वापस ना जाएं और ना ही दौड़ में सुस्त बनें। जब लड़ाई का धुआं दूर हो जाएगा, तो आप अपने द्वारा की गई अच्छाई को समझेंगे और अपने योग्य के अनुसार प्राप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:1 में हमने पढ़ा, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समंदर भी न रहा। पुनरुत्थानवादी ने मृत्यु नामक मानव अनुभव में अभी तक संक्रमणकालीन चरण को पारित नहीं किया था, लेकिन उसने पहले ही एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी। इस वैज्ञानिक चेतना के साथ एक और रहस्य युद्ध घाटन किया गया था, यहाँ तक कि स्वर्ग से घोषणा सर्वोच्च सिद्धभाव का भगवान सिद्धभाव का दिव्य सिद्धांत हमेशा पुरुषों के साथ है और वो उनके लोग हैं। इस प्रकार मनुष्य अब एक दुखी पापी के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर के धन्य बच्चे के रूप में माना जाता था। क्यों? क्योंकि प्रेरित यूहन्ना के प्रति स्वर्ग और पृथ्वी की शत्रुता गायब हो गई थी, और इस झूठे अर्थ के स्थान पर आध्यात्मिक भावना थी, व्यक्ति पार्क स्थिति, जिसके द्वारा वो नए स्वर्ग और नई पृथ्वी को देख सकता था, जिसमें आध्यात्मिक विचार और वास्तविकता की चेतना शामिल है। ये निष्कर्ष निकालने के लिए शास्त्र सामिक अधिकार है कि इस अस्तित्व की वर्तमान स्थिति में पुरुषों के लिए ये संभव है, और ये कि हम यहाँ और अब मृत्यु, दुख और पीड़ा के निवारण के लिए सुचेत हो सकते हैं। ये वास्तव में पूर्ण क्रिश्चियन साइंस का पूर्वज है। प्रिय पीड़ित, दिल थाम लो। इस वास्तविकता के लिए निश्चित रूप से कुछ समय में ये और किसी तरह दिखाई देगा। अधिक दर्द नहीं होगा और सभी आंसू मिटा दिए जाएंगे। अब आप इसे पढ़ते हैं तो यीशु के इन शब्दों को याद रखें, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। ये आध्यात्मिक चेतना इसलिए एक वर्तमान संभावना है। आत्मा द्वारा शासित होने पर मनुष्य समान जैसा पूर्ण हो जाता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है, उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्या प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा, वो उचित या निंदनीय होगा।